मेरे अत्यंत आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 14 जून 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और फ्रेंड्स आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अनिकेत कुमार, आप हिसामुद्दीनपुर मिकीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और देव प्रकाश शुक्ल, आप गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं। तो अनिकेत और देव प्रकाश, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबके स्वागत के बाद मैं अब आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा मिस्टर पावेल दत्ता को, जो कोलकाता के रहने वाले हैं, और उन्हें बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के एग्जीक्यूटिव एग्जाम का जो ग्रुप ए है वह क्वालिफाई कर लिया है और अब वो पर्सनालिटी टेस्ट में एपियर होंगे। तो पावेल, इसके लिए बहुत बहुत हम सबकी ओर से बधाई और बेहतर सफलता के लिए, आगे की सफलता के लिए शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना भी। मित्रों, पावेल दत्ता ने जो मेल लिखा है, मेरा मन कर रहा है कि वह मेल मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊं। खासकर यह बात अचानक मेरे मन में इसलिए आई है कि आज के लाइफ मैनेजमेंट में भी मैंने कुछ इसी तरह की बातें आप लोगों के सामने रखी हैं कि कैसे यदि हम कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोच लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वो चीज कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक नमूने के बतौर पर आप समझ लीजिए कि मैं पावेल दत्ता ने जो मेल लिखा है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। ओरिजिनल इंग्लिश में है, बीच बीच में मेरी कोशिश होगी कि मैं हिंदी में उसका अर्थ आपको बताता जाऊं, अदरवाइज आप देखेंगे कि बहुत सरल, अच्छी, प्यारी इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, आपकी भी समझ में आ जाएगा। इन्होंने लिखा है, सर, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम ए डेली फॉलोअर्स ऑफ योर ऑडियो लेक्चर्स। मैं कलकत्ता से हूं और मैं डेली आपका ऑडियो लेक्चर सुनता हूं। अबाउट ए ईयर एगो, लगभग एक साल पहले, आई रोट यू ए मेल रिगार्डिंग माई फेलियर इन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016। लगभग एक साल पहले जब मैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फेल हुआ था, तब मैंने आपको एक मेल लिखा था। आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। मैं बहुत ही ज्यादा अवसाद में और बहुत ही ज्यादा अपने को बेचैनी में महसूस कर रहा था। आई वॉज लूजिंग कॉन्फिडेंस, मैं अपना आत्मविश्वास खो रहा था। बट यू एडवाइज्ड मी नॉट टू फील पैनिक्ड एंड ट्राई वंस अगेन विथ फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। लेकिन आपने मुझे यह सलाह दी कि मुझे व्याकुल बेचैन नहीं होना चाहिए और एक बार फिर से पूरे समर्पण और पूरे कंसंट्रेशन के साथ ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आई टुक योर मेल एज ए प्रिस्क्रिप्शन। मैं आपके इस मेल को मैंने प्रिस्क्रिप्शन, जैसे डायरेक्ट डॉक्टर लिख करके देते हैं ना, उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, आप जानते हैं, उस रूप में मैंने लिया। आई फॉलोड योर इंस्ट्रक्शन रिलीजियसली, जैसे कि धर्म के नियमों का पालन किया जाता है, उसी तरह से मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। आई वेंट थ्रू योर YouTube वीडियोज एंड डेली ऑडियो लेक्चर्स रेगुलरली। मैं आपके YouTube के प्रोग्राम्स और डेली ऑडियो लेक्चर को नियमित रूप से फॉलो करता रहा, सुनता रहा। आई कंसंट्रेटेड ऑन बेसिक्स एंड वर्क मोर ऑन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने बेसिक्स को समझने पर ज्यादा ध्यान दिया और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। एज ए रिजल्ट, और उसके परिणाम में, आई हैव क्वालिफाइड फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2017 ग्रुप ए। इसे आप मित्रों समझ गए होंगे। आई विश टू कम टू यू एंड टच योर फीट बाई माई हर्ट। चलिए, अब उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी इच्छा है कि मैं आऊं और आपके पैर चरण स्पर्श करूं, हृदय से स्पर्श करूं। थैंक यू पावेल दत्ता आपकी इन भावनाओं के लिए। मित्रों, यहां मैंने एक मेल का छोटा सा टुकड़ा आपको पढ़कर सुनाया। आपको चाहिए कि आप इस मेल की थोड़ी सी एनालिसिस करें, इस मेल को एक बार दोबारा सुने और आप देखें कि अगर आप पहले से थोड़ी सी तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तब उसके बिना आप इस तरह के मेल नहीं लिख सकेंगे। और देखिए, फिर वो चीज में वो प्रभाव खुद पैदा हो जाता है कि वो दूसरों को बताया जाए या जो पढ़ेगा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस पर एक्शन वो लेगा। आइक मित्रों, तो अब आइए अब हम अपने न्यूज एनालिसिस पर आते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पूर्वोत्तर परिषद को मुख्य विषय के रूप में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जहां तक दूसरी न्यूज का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा खबरें ऐसी नहीं थी जिन पर हम चर्चा कर सकें। यहां मैं एक खबर की आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा जो कल के न्यूज में थी, लेकिन उसके बारे में कुछ बहुत डिटेल्स नहीं आई थी बातें। आज मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। और वो है मित्रों की मातृ मृत्यु दर पर अभी जो आंकड़े आए हैं। मातृ मृत्यु दर, आप जानते हैं कि माताओं का जो प्रसव का जो समय होता है, जो काल होता है, खासकर 15 साल से 49 साल, 15 years to 49 years, इस बीच में जो माताएं बनने की स्थिति में होती हैं, तो उनकी जो मृत्यु दर है उसके बारे में अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं। पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये जो आंकड़े हैं मातृ मृत्यु दर के, इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस देता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये मालूम होना चाहिए, ये प्री के एग्जाम में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। दूसरी बात यह कि ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, मतलब इसका जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, राइट। अभी इन्होंने जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं, ये 2014 और 16 के मातृ मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए हैं। इसको थोड़ा सा बस आप देख लीजिए, ज्यादा हम नहीं जाएंगे, कि अभी जो आंकड़े हैं उसमें जो मृत्यु दर है, माताओं की मृत्यु की जो दर है, आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, 1 लाख प्रति 1 लाख पर 130 है। ये आंकड़े आपको नोट कर लेना चाहिए, लेटेस्ट आंकड़ा है और खासकर मतलब ये समझ लीजिए सबसे विश्वसनीय आंकड़ा है, राइट। 1 लाख पर 130, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग 1 लाख की जगह 1,000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं, 1 लाख पर 130। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी जो 2011 और 13 की थी, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी आप तुलना कर सकेंगे कि हम मातृ मृत्यु दर में सफल को कम करने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। 2011-13 के दौरान यह आंकड़ा 1 लाख पर 167 था, 167, यानी कि इस बीच में जो 2-3 साल का जो पीरियड रहा है, हम 166 को 130 लाने में सफल हो गए हैं। अभी हालांकि यात्रा और भी करनी है, इस आंकड़ों में और भी सुधार लाना है। और ये आंकड़े बताते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से जो हमारा उत्तर भारत है उसकी तुलना में दक्षिण भारत के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। एक ये भी फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, दक्षिण भारत में ये जो आंकड़े हैं मित्रों अब 77 है, वर्तमान में यह है 77, जबकि आप देखिए जो नेशनल है वो कितना है, 130, साउथ में है 77, तो मतलब साउथ की स्थिति काफी इस मामले में बेहतर है। तो ये डेटा आपको मालूम होने चाहिए, और ये डेटा याद रखिए कि बहुत समय तक काम आने वाला आंकड़ा है, मतलब जब तक नया आंकड़ा नहीं आता तब तक तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा भी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, राइट फ्रेंड्स। तो आइए अब मैं थोड़ा सा पूर्वोत्तर परिषद के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। कल के रेडियो न्यूज में आपने सुना कि जो पूर्वोत्तर परिषद है हमारा, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पुनर्गठन किया गया है, और हमारे जो गृहमंत्री हैं, केंद्रीय गृहमंत्री, उनको इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिए कि पदेन अध्यक्ष का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर पद पर होगा वह उसका अध्यक्ष बन जाएगा। जैसे पदेन सचिव का मतलब है कि वह जिस पद पर होगा वह उसका सचिव बन जाएगा। तो ये जो पूर्वोत्तर परिषद है ये बेसिकली एक ऐसा आप कह लीजिए कि एक रीजनल काउंसिल है, जिसमें खासकर जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, देखिए पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनका कैसे विकास किया जाए, उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, उनके बारे में एक आप कह लीजिए कि एक संगठन है, वह प्लान करती है। प्लान करने के बाद वह उनके एग्जीक्यूशन को भी थोड़ा बहुत देखती है, राइट। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो काउंसिल है, इस काउंसिल का जो गठन हुआ है ये संविधान के तहत नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। हमारे यहां कुछ क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए, मध्य भारत के लिए, इसी तरह से पूर्वोत्तर परिषद के लिए भी एक परिषद, एक संगठन बनाया गया जिसे हम पूर्वोत्तर परिषद कहते हैं। ये जो क्षेत्रीय परिषदें बनी थी फ्रेंड्स, ये स्टेट जब हम राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उसके दौरान इसका गठन हुआ था। पूर्वोत्तर परिषद का गठन उसके बहुत बाद में हुआ है। आपको मालूम है कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 में, भाषा के आधार पर, यह आपको जानकारी में होगी ये बात। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, इसका जो गठन हुआ है वो 1971 में हुआ है। देखिए यहां मैं आपको वे तथ्य बता रहा हूं जो आपके प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1971 में हुआ और बकायदे एक एक्ट के जरिए हुआ है, यानी कि यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, यह आपको याद रखना चाहिए, राइट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलांग में है। ये बात मैं जानबूझ करके आपको बता रहा हूं, खासकर जो हमारे सिविल सर्विस का प्री एग्जाम होता है उसके पैटर्न पर कि किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अब वहां होने लगी है, राइट। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 स्टेट थे शुरू में इसके मेंबर थे, और सिक्किम को बाद में शामिल किया गया है, 2002 में सिक्किम को शामिल किया गया है। तो इसके जो मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, उन स्टेट के नाम आप सुन लीजिए एक बार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 स्टेट इसके मेंबर हैं। और फ्रेंड्स इनके लिए बकायदे कोष तैयार किया गया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, जिसमें ये स्टेट भी पैसा लगाते हैं, और फिर उस धन का इस्तेमाल उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। 2017 में लेटेस्ट है, 2017 में इसी काउंसिल ने अपने इन क्षेत्रों के लिए 3 वर्षीय योजना तैयार की थी, 3 साल का प्लान तैयार किया है, और उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का कोष रखा गया है, 2500 करोड़ रुपए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनका डेवलपमेंट कर पाना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है। और ये जो फंड होता है, अभी तक के अगर रिव्यू करें तो ये देखा गया है कि इस फंड के जरिए नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं उनके 3-4 क्षेत्रों में डेवलपमेंट की बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, जिनमें एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है हाईवेज, तीसरा है ब्रिजेस यानी कि सेतु पुल, और फिर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। इन क्षेत्रों में ये जो पूर्वोत्तर परिषद ने काफी अच्छा काम किया है। और एक तथ्य आपको थोड़ा सा और बता दूं मित्रों, और वो ये है कि अगर हम इन सभी उत्तर पूर्व भारत के जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या है इनकी लगभग 4 करोड़ के आसपास इन स्टेट्स की पॉपुलेशन है। दूसरी दृष्टि से आप देखेंगे तो ये बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए क्षेत्र हैं, वन का क्षेत्र तो यहां कितना ज्यादा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर वो जो हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत अब अपने दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक्टिव हो गया है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक है, इस पर हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले बात की थी आपको अगर ध्यान होगा तो बट नेचुरल है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ जाएंगे तो उसका जो रास्ता होगा वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ही माध्यम से होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नीचे आप नक्शे में देखेंगे कि म्यांमार पड़ता है, और म्यांमार से ही फिर पूरा का पूरा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया का रास्ता है वो खुलता है, इसीलिए म्यांमार को साउथ ईस्ट एशिया का गेट भी कहते हैं, प्रवेश द्वार भी कहते हैं, तो उस दृष्टि से भी हमारे लिए नॉर्थ स्टेट के राज्यों का विकास, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे तो खैर है ही कि वो भारत के का हिस्सा है, वो मेन स्ट्रीम में हमें लाना ही चाहिए। तो मित्रों, यह आज के मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। जहां तक ईमेल का सवाल है, सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अभिषेक त्रिपाठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, दिनेश दहिया, प्रदीप कुमार, तेजिंदर सिंह, रेखा द्रविड़, अमित कुमार, कामिनी सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, और मरसीमान जम्मू कश्मीर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।